एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दिमाग को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है, कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देती है कि भाई एक उम्र के बाद हमारा दिमाग वो फिक्स हो जाता है।
सही कहा, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नॉर्मन डोएज की किताब द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ की।
हाँ,
है ना
जी। ये किताब हमें ले जाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की दुनिया में, मतलब हमारे दिमाग की वो काबिलियत कि वो खुद को बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है। सच में कमाल की चीज है ये।
और ये आज इतना जरूरी क्यों लगता है? मुझे लगता है क्योंकि ये एक उम्मीद देता है।
हाँ, उम्मीद, चाहे वो कोई दिमागी चोट से उभरना हो या कोई सीखने में दिक्कत आ रही हो उसे पार करना हो या फिर रोजमर्रा की कोई आदत
बदलनी हो।
हाँ बिल्कुल, ये किताब बताती है कि हमारा दिमाग शायद हमारे कल्पना से कहीं ज्यादा लचीला है, ज्यादा सक्षम है।
और ये तोड़ता है उस धारणा को कि बचपन के बाद दिमाग खास बदलता नहीं।
है ना कमाल की बात, ये जानना कि बदलाव मुमकिन है, सच में ये अपने आप में एक ताकत है।
तो चलें पहले लेखक से मिलते हैं, डॉक्टर नॉर्मन डोएज। ये भी कोई आम लेखक नहीं है, है ना?
नहीं बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ राइटर नहीं है, वो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोएनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और टोरंटो यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे बड़े नामों से जुड़े रहे हैं।
अच्छा, मतलब कई सारे पहलू हैं उनके काम के।
हाँ, यही बात उन्हें खास बनाती है। वो एक तरफ क्लिनिक में मरीज देख रहे हैं, उनकी तकलीफें समझ रहे हैं, दूसरी तरफ साइकोएनालिसिस के जरिए मन की गहराइयों में उतर रहे हैं और साथ ही साइंस मतलब न्यूरोसाइंस में जो नया चल रहा है उस पर भी उनकी पैनी नजर है।
वाह, और उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको?
मुझे लगता है उनका कहानियां कहने का अंदाज, वो मुश्किल साइंटिफिक बातों को आम इंसानों के कहानियों में पिरो देते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
उन्होंने सालों लगाए, दुनिया भर में घूमे, उन साइंटिस्ट से मिले जो इस फील्ड में काम कर रहे थे और उन मरीजों से जिनकी जिंदगियां बदली। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है,
मतलब असल जिंदगी में इसका क्या असर होता
बिल्कुल।
है।
बिल्कुल, जैसे स्ट्रोक के मरीज के लिए इसका क्या मतलब है या कोई बच्चा जिसे पढ़ने लिखने में दिक्कत है उसके लिए क्या मायने हैं। वो एक तरह से विज्ञान की लैब से उम्मीद लेकर आते हैं।
तो किताब पर आते हैं, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, ये उन किताबों में से है जिन्होंने साइंस को आम लोगों तक पहुंचाया।
हाँ, एक मील का पत्थर कह सकते हैं। इसका मेन आइडिया यही है कि हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है, फिक्स नहीं है।
अच्छा,
बल्कि वो एक जिंदा बगीचे जैसा है।
अच्छा।
जो लगातार बदल रहा है, माहौल के हिसाब से ढल रहा है।
बगीचे जैसा।
हाँ।
ये अच्छा उदाहरण है।
और इस बदलाव का जो आधार है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब ये कि हमारा दिमाग हमारे तजुर्बों से, हमारे विचारों से, हमारे कामों से,
यहां तक कि चोट लगने पर भी।
हाँ, चोट लगने पर भी अपनी बनावट और अपना काम करने का तरीका बदल सकता है।
ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है, क्योंकि सदियों से माना जाता था कि भाई दिमाग का ढांचा तो बचपन में ही पक्का हो गया।
तो ये किताब कहती है कि हम अपने दिमाग की कहानी के सिर्फ दर्शक नहीं हैं।
बिल्कुल नहीं, हम उसके क्या कहते हैं, सक्रिय भागीदार हैं, को क्रिएटर हैं। डोएग्स हमें उन वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं जिन्होंने पुरानी सोच को चैलेंज किया।
और उन लोगों की कहानियां वो तो कमाल की होंगी।
अरे बिल्कुल, ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने दिमागी चुनौतियों को मात दी, जैसे कोई जीप से बैलेंस बनाना सीख गया।
जीप से? ये कैसे मुमकिन है?
हाँ, बताएंगे इसके बारे में। और ये किताब सिर्फ ठीक होने या रिकवरी तक ही सीमित नहीं है।
अच्छा, और क्या है इसमें? सीखना, आदतें बनाना, यहाँ तक कि प्यार, पसंद नापसंद, ये सब भी न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़े हैं।
ओह।
लेकिन इसमें एक पेंच भी है। ये लचीलापन जहाँ अच्छी चीजें सिखाता है, वहीं बुरी आदतें, लत या चिंता जैसी दिक्कतें भी इसी वजह से दिमाग में जम जाती हैं।
मतलब ये एक दोधारी तलवार है।
बिल्कुल, और आखिर में किताब इस पर भी जोर देती है कि हमारे विचार, हमारी कल्पना, इनकी ताकत से भी दिमाग बदल सकता है।
वाओ, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलें कुछ खास कहानियों और आइडियाज में थोड़ा और गहरे उतरते हैं।
हाँ जरूर। पहली कहानी है चेरिल शिल्ट्स की। ये वो महिला थीं जिनका संतुलन बनाने वाला सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम, एक एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट से पूरी तरह खराब हो गया था।
ओह, तो फिर
उन्हें हर वक्त लगता था कि वो गिर रही हैं। सोचिए जरा कैसी हालत होगी,
कल्पना करना भी मुश्किल है।
लेकिन एक वैज्ञानिक थे, पॉल बाखेरिटा, उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। एक डिवाइस बनाया। ये डिवाइस क्या करता था कि सिर पर लगे सेंसर से बैलेंस की जानकारी लेता था और उसे बिजली के हल्के स्पंदनों में बदलकर चेरिल की जीप पर भेजता था।
जीप पर?
हाँ, और कमाल देखिए, चेरिल का दिमाग धीरे धीरे इन जीप वाले सिग्नल्स को समझना सीख गया।
मतलब दिमाग ने जीप से बैलेंस करना सीख लिया।
एग्जैक्टली, जो दिमागी हिस्सा जीप की संवेदनाओं को समझता था उसने बैलेंस की जानकारी प्रोसेस करना शुरू कर दिया। इसे सेंसरी सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक इंद्रिय का काम दूसरी ने ले लिया।
ये तो सच में यकीन करने लायक नहीं है।
और पता है सबसे कमाल की बात, कुछ समय बाद वो बिना डिवाइस के भी अपना बैलेंस काफी हद तक बनाने लगी। दिमाग ने खुद को रीवायर कर लिया था।
ये दिखाता है कि दिमाग में कितनी कितनी गहराई तक बदलने की क्षमता है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे माइकल मर्जिनिच के काम ने सामने लाया। वो है इस्तेमाल करो या खो दो।
अच्छा, यूज इट और लूज इट, ये क्या है?
मर्जिनिच ने बंदरों पर प्रयोग किए। उन्होंने दिखाया कि हमारे दिमाग में जो नक्शे बने होते हैं कि कौन सा हिस्सा शरीर के किस अंग को कंट्रोल करेगा या कौन सा काम करेगा, वो नक्शे फिक्स नहीं है, वो बदलते रहते हैं।
जैसे
उन्होंने एक प्रयोग में बंदर की एक उंगली का इस्तेमाल बंद करवा दिया।
तो क्या हुआ?
तो दिमाग में उस उंगली के लिए जो जगह थी वो सिकुड़ गई और आसपास की जो उंगलियां इस्तेमाल हो रही थी उनके नक्शों ने वो जगह घेर ली।
अरे वाह।
और अगर किसी उंगली का ज्यादा इस्तेमाल किया
तो
उसका नक्शा बड़ा हो गया। इसका मतलब यह है कि दिमाग में जगह के लिए कॉम्पिटिशन है। आप जिस स्किल की प्रैक्टिस करते हैं उसका एरिया बढ़ता है, जिसे नजरअंदाज करते हैं वो सिकुड़ जाता है।
ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, और ये इस्तेमाल करो या खो दो का सिद्धांत स्ट्रोक के मरीजों के इलाज में क्रांति ले आया एडवर्ड टाउब के काम के जरिए।
एडवर्ड टाउब,
उन्होंने क्या किया? पहले तो यही माना जाता था ना कि स्ट्रोक के बाद एक हद तक ही सुधार हो सकता है। कॉन्सेप्ट दिया सीखा हुआ इस्तेमाल न करना या लर्न्ड नॉन यूज।
ये क्या होता है?
इसका मतलब है कि स्ट्रोक या चोट के बाद मरीज उस प्रभावित हाथ या पैर का इस्तेमाल करना छोड़ देता है क्योंकि वो मुश्किल लगता है।
हाँ, आसान तो नहीं होता होगा।
और धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग उस अंग का नक्शा ही छोटा कर देता है या लगभग मिटा देता है। भले ही उस अंग में थोड़ी हरकत की गुंजाइश बाकी हो, दिमाग उसे इस्तेमाल करना भूल जाता है।
ओह, ये तो।
और टाउब का इलाज इसी पर आधारित था। उसे कहते हैं कंस्ट्रेंड इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी या CI थेरेपी।
इसमें क्या करते हैं?
इसमें मरीज का जो ठीक वाला हाथ है उसे बांध देते हैं या रोक देते हैं।
अच्छा,
ताकि
उसे मजबूरन अपने कमजोर या लकवाग्रस्त हाथ से ही काम करना पड़े, और वो भी हल्के फुल्के काम नहीं बल्कि घंटों तक मुश्किल दोहराव वाले काम।
ये तो सुनने में ही काफी मुश्किल लग रहा है, मरीज के लिए तो बहुत कठिन होता होगा। कठिन तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नतीजे वो हैरान करने वाले थे। इस जबरदस्त ट्रेनिंग ने दिमाग को मजबूर किया कि वो उस बेकार समझे जाने वाले हाथ के लिए नए रास्ते खोजे, खुद को रीवायर करे।
और इससे फर्क पड़ा उन लोगों को भी जिन्हें सालों से लकवा था।
हाँ, सालों से जिन्हें कोई सुधार नहीं दिखा था उनमें भी महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। ये फिर से वही बात साबित करता है, केंद्रित प्रयास, इंटेंस प्रैक्टिस दिमाग को बदल सकती है।
कमाल है। मतलब सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं, क्या मानसिक मेहनत भी दिमाग बदल सकती है, जैसे सोचना या ध्यान लगाना?
बिल्कुल। आपका सवाल सीधा हमें जेफरी श्वार्ट्ज के काम पर ले जाता है। उन्होंने OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीजों पर काम किया।
OCD, जिसमें वो बार बार आने वाले ख्याल और काम होते हैं?
हाँ, OCD में क्या होता है कि दिमाग का एक चिंता सर्किट है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। उससे अनचाहे ख्याल ऑब्सेशंस आते हैं और उन्हें शांत करने के लिए लोग कुछ काम बार बार करते हैं, कंपल्शंस।
तो श्वार्ट्ज ने क्या किया?
उन्होंने माइंडफुलनेस यानी सचेत ध्यान पर आधारित एक 4 कदमों वाली तकनीक सिखाई। पहला, जो विचार आ रहा है उसे पहचानो कि ये OCD का लक्षण है, हकीकत नहीं।
रीलेबल,
ठीक है। दूसरा, उस विचार के लिए अपनी दिमागी वायरिंग, उस गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराओ, खुद को नहीं।
रीएट्रिब्यूट।
अच्छा, तीसरा, फौरन अपना ध्यान किसी और प्रोडक्टिव अच्छी लगने वाली एक्टिविटी पर लगाओ।
और चौथा,
उस OCD वाले विचार या इच्छा को महत्वहीन समझो, उसकी कीमत घटाओ।
रीवैल्यू। और ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से काम कर गया, दवा या कुछ और नहीं?
हाँ, ये पूरी तरह से एक मानसिक अभ्यास था और इससे मरीजों ने OCD वाले पुराने मजबूत हो चुके दिमागी रास्तों को कमजोर किया और नए स्वस्थ रास्ते बनाए। और पता है
क्या,
उनके ब्रेन स्कैन में भी बदलाव देखे गए। ये दिखाता है कि कैसे हमारा मन, हमारी चेतना, हमारे दिमाग की फिजिकल वायरिंग बदल सकती है।
ये तो अविश्वसनीय है।
और इसी तरह का एक और उदाहरण है अल्वारो पास्कल लियोन का पियानो वाला प्रयोग।
पियानो वाला प्रयोग?
हाँ, उन्होंने लोगों के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ने असल में पियानो पर उंगलियां चलाना सीखा, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ बैठकर कल्पना की कि वो पियानो बजा रहे हैं बिना उंगली हिलाए।
अच्छा, फिर क्या हुआ?
हैरानी की बात ये थी कि दोनों ग्रुप्स के दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में, यानी उंगलियों को कंट्रोल करने वाले हिस्से में, एक जैसे फिजिकल बदलाव आए
सिर्फ कल्पना करने से।
हाँ, और जब कल्पना करने वाले ग्रुप ने असल में पियानो बजाना शुरू किया तो उन्होंने बहुत तेजी से सीखा, क्योंकि उनके दिमाग में रास्ते पहले से तैयार हो चुके थे।
और ड्वेज टॉक थेरेपी की भी बात करते हैं ना, है ना, जैसे साइको एनालिसिस।
बिल्कुल, वो तर्क देते हैं कि बातचीत वाली थेरेपी भी एक न्यूरोप्लास्टिक प्रोसेस है। जब हम पुरानी तकलीफदेह यादों, इमोशनल पैटर्न पर काम करते हैं तो हम उन न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं। थेरेपिस्ट की मदद से हम उन यादों को नया मतलब देते हैं, नई कहानी बनाते हैं, रिएक्ट करने के नए तरीके सीखते हैं। इससे पुराने कठोर रास्ते कमजोर होते हैं और नए लचीले रास्ते बनते हैं।
तो इन सब कहानियों, इन प्रयोगों से कुछ बड़े संदेश, कुछ की टेकअवेज निकलते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। पहला और शायद सबसे बड़ा सबक तो यही है कि वो जो पुरानी निराशा थी ना, कि दिमाग बदल नहीं सकता।
हाँ, न्यूरोलॉजिकल निराशावाद।
बिल्कुल, उसका अंत हो गया है। ये किताब उम्मीद देती है। ये बताती है कि सीमाएं उतनी पक्की नहीं हैं जितनी हम मानते थे, संभावनाएं हैं।
ये बहुत सशक्त महसूस कराता है ना, खासकर जब हम महसूस करते हैं कि हम किसी चीज में फंस गए हैं, चाहे वो कोई आदत हो या सोचने का तरीका।
सही कहा। दूसरा बड़ा सिद्धांत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। और इसी का दूसरा पहलू है, इस्तेमाल करो या खो दो।
ये तो जैसे बदलाव का बेसिक नियम हो गया।
हाँ, हम जो भी बार बार करते हैं, चाहे सोचना हो या कोई काम करना, उससे जुड़े दिमागी कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। यही सीखने का और आदत बनने का आधार है।
इसे हम भारत में रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। कोई भी हुनर सीखना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो या कोई नई भाषा, शुरुआत में मुश्किल लगता है।
हाँ, क्योंकि रास्ते कच्चे होते हैं,
पर जैसे जैसे अभ्यास करते हैं वो रास्ते पक्के हो जाते हैं। और बुरी आदतों का भी यही चक्कर है।
बिल्कुल, और यहीं पर तीसरा संदेश आता है। ये जो प्लास्टिसिटी है, ये जो लचीलापन है, ये एक दोधारी तलवार है।
अच्छा, कैसे?
देखिए, ये लचीलापन हमें सीखने, चोट से उभरने में मदद करता है। ये अच्छी बात है, लेकिन यही लचीलापन बुरी आदतों, लत या पुरानी चिंता, डर के पैटर्न को भी दिमाग में गहरा बिठा देता है।
मतलब दिमाग तो बस पैटर्न पकड़ता है, वो अच्छा बुरा नहीं देखता।
एग्जैक्टली, प्रक्रिया न्यूट्रल है। जैसे आजकल हम सब स्मार्टफोन की लत से परेशान हैं।
हाँ, ये तो बहुत आम है।
हर बार जब हम बेवजह फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करते हैं, हम उस आदत वाले दिमागी रास्ते को थोड़ा और मजबूत कर रहे होते हैं। इसे तोड़ने के लिए सचेत प्रयास चाहिए, किसी नई आदत का रास्ता बनाना पड़ता है।
और चौथा संदेश जो मुझे खास तौर पर बहुत दिलचस्प लगा, वो है मन की, हमारी विचारों की शक्ति।
हाँ, ये बहुत गहरा विचार है
कि हमारे विचार, हमारा ध्यान, हमारी कल्पना, ये सिर्फ हवा हवाई चीजें नहीं है। ये असल में फिजिकली हमारे दिमाग को बदल सकते हैं, जैसा हमने ओसीडी वाले उदाहरण में देखा या पियानो वाले में।
सही कहा। ये माइंडफुलनेस और ध्यान की जो आजकल इतनी बात होती है, उसका आधार शायद यही वैज्ञानिक समझ है। जब हम ध्यान लगाते हैं, हम असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। वो कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
हाँ,
ये कुछ वैसा ही है, लेकिन साइंटिफिक लेवल पर। मन सचमुच मस्तिष्क को बदल सकता है।
तो इन सब आइडियाज का सार क्या है? किताब में कुछ ऐसी लाइनें या विचार हैं जो खास तौर पर याद रह जाते हैं?
हाँ, कई हैं। जैसे पहला सार तो यही है, जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे मजबूती से जुड़ जाते हैं। ये सीखने और आदत का मूल मंत्र है।
दूसरा
सार, दिमाग एक मशीन नहीं बल्कि एक जीवित जंगल जैसा है, जहां इस्तेमाल करो या खोदो का नियम चलता है। ये दिमाग की बदलती कंपेटिटिव प्रकृति दिखाता है।
जंगल वाला उदाहरण फिर से, ये अच्छा है। और
तीसरा सार, हमारे विचार हवा हवाई नहीं है, वे वास्तविक भौतिक प्रक्रियाएं हैं जो मस्तिष्क की संरचना बदल सकती हैं। मन मस्तिष्क को बदल सकता है, ये चेतना की ताकत दिखाता है।
ये इस्तेमाल करो या खोदो वाली बात पर जरा सोचें, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें दिमागी तौर पर एक्टिव रहना कितना जरूरी है। नहीं तो
हाँ, नहीं तो वो क्षमताएं या वो दिमागी इलाके कमजोर पड़ने लगेंगे। जैसे कोई भाषा सीखी और फिर सालों तक इस्तेमाल नहीं की तो भूलने लगते हैं।
सही। तो इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
बिल्कुल। सबसे पहले तो पर्सनल ग्रोथ और आदतें बदलने में।
हाँ।
अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो ये समझना कि दोहराव से ही वो बनी है और नई आदत भी दोहराव से ही बनेगी।
जैसे
मान लीजिए कोई अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहता है।
हाँ।
तो पहले तो उसे ट्रैक करना होगा, पहचानना होगा कि कब और क्यों फोन उठता है। फिर सचेत रूप से तय करना होगा कि उस वक्त फोन उठाने की बजाय वो 5 मिनट कुछ और करेगा, जैसे पानी पिएगा या खिड़की से बाहर देखेगा।
और इसे लगातार करना होगा।
हाँ, रोज, ताकि नया रास्ता बने। शिक्षा और सीखने में भी ये बहुत काम का है। अगर कोई विषय मुश्किल लगता है तो उस पर ज्यादा फोकस करना, अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करना।
और वो मानसिक अभ्यास वाली बात।
हाँ, जैसे परीक्षा की तैयारी में सिर्फ रट्टा मारने की बजाय कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में दोहराना, उसे किसी और को समझाने की कल्पना करना, या कोई म्यूजिकल पीस सीख रहे हैं तो उसे मन में बजाना।
अच्छा, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में?
वहाँ तो ये उम्मीद की किरण है। स्ट्रोक या ब्रेन इंजुरी के बाद रिहैबिलिटेशन में ये जानना कि दिमाग बदल सकता है बहुत हौसला देता है, मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए। क्रॉनिक पेन यानी पुराने दर्द को मैनेज करने में भी माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकें मदद करती हैं, क्योंकि वो दर्द के दिमागी पैटर्न को बदल सकती हैं।
और थेरेपी में भी ये सोच कि हम सिर्फ इलाज नहीं करवा रहे हैं बल्कि अपने दिमाग को सक्रिय रूप से बदल रहे हैं, ये भी ताकत देती होगी।
बिल्कुल। और आखिर में हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ तरीके से उम्र दराज होने के लिए, इस्तेमाल करो या खोदो का नियम यहाँ भी लागू होता है।
मतलब दिमाग को बूढ़ा नहीं होने देना है।
हाँ, नई चीजें सीखते रहना, पहेलियां सुलझाना, लोगों से मिलना जुलना, कोई नया शौक पालना, ये सब दिमाग को एक्टिव और लचीला बनाए रखते हैं। रिटायरमेंट का मतलब दिमागी रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए।
ये सारी बातें सुनकर, इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या सबसे यादगार बात क्या रही?
मेरे लिए शायद ये एहसास कि हम कितने कितने अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने दिमाग की बदलने की क्षमता को, और खासतौर पर वो लर्न्ड नॉन यूज वाला आइडिया कि कैसे हम अनजाने में ही अपनी रिकवरी को रोक सकते हैं सिर्फ किसी अंग का इस्तेमाल न करके। ये जानना कि उसे पलटा जा सकता है, ये बहुत शक्तिशाली है।
और मेरे लिए शायद वो कल्पना वाली बात कि सिर्फ सोचने भर से, विजुअलाइज करने से दिमाग में असल बदलाव आ सकते हैं, ये मन की शक्ति को एक नए लेवल पर ले जाता है। और हाँ, वो चेरिल शिल्ड्स की कहानी, जीप से बैलेंस बनाना, ये तो दिमाग से जाती ही नहीं।
सच में तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबक शायद सशक्तिकरण का ही है, ये ज्ञान कि हम अपने दिमाग की नियति के सिर्फ शिकार नहीं हैं बल्कि उसके सह निर्माता हैं। हमारी आदतें, हमारा ध्यान, हमारे प्रयास, ये सब लगातार हमारे दिमाग को कर रहे हैं।
ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।
हाँ, जिम्मेदारी है, लेकिन उससे ज्यादा ये एक मौका है, एक उम्मीद है, बदलाव हमेशा संभव है।
तो अंत में सार यही है कि दिमाग स्थिर नहीं है, वो एक बहती नदी जैसा है, एक बढ़ते हुए बगीचे जैसा है, जिसे हम अपने हर अनुभव, हर विचार, हर चुनाव से लगातार सींच रहे हैं, बदल रहे हैं, आकार दे रहे हैं।
बिल्कुल। और शायद यही सबसे जरूरी विचार है आज की चर्चा से। अब सवाल यह है कि इस जानकारी का हम करेंगे क्या? अपने दिमाग के इस बगीचे को हम कैसे सींचना चाहेंगे? क्या कोई एक छोटा सा बदलाव है जिसे करने का हम आज फैसला कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारा दिमाग बदलने को तैयार है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।